ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय सभा से की गई पारित और प्रतिनिधि सभा में विचार विमर्श जारी। नए मंत्रालय लागू होने के साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा मंत्रियों के कार्य विभाजन में फेरबदल। इस वर्ष के बसंत पर्वतारोहण सत्र के लिए सगरमाथा आरोहण मार्ग खुला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बीजिंग में वार्ता। बातचीत अत्यंत सकारात्मक रही, अमेरिकी राष्ट्रपति का कथन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा से नीति तथा कार्यक्रम पारित की गई है। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने नेपाल सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 की नीति तथा कार्यक्रम पर हुई चर्चा में उठे प्रश्नों का जवाब दिया है। नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा समाप्त होने के बाद जवाब देते हुए मंत्री बागले ने कहा कि अतीत में बने अर्थतंत्र के आधार पर समावेशी विकास के साथ साथ समग्र सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री वागले ने जानकारी दी कि सरकार 100 बिंदुओं वाले शासकीय सुधार कार्यों और सदन में आए सुझावों को आधार मानकर आगामी बजट प्रस्तुत करेंगे। सांसदों ने सुकुम्बासियों के अधिकारों का उचित व्यवस्थापन, अपांग तथा पिछड़े समुदायों के अधिकार संरक्षण, महंगाई नियंत्रण, सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण, सवारी साधनों की गुणवत्ता परीक्षण और नियमित निरीक्षण के लिए स्पष्ट योजना बनाने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। प्रतिनिधि सभा में नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में भाग लेते हुए संशोधनकर्ता सांसदों ने कहा कि नेपाल की भूमि कालापानी और लिपुलेक में अतिक्रमित हुई है, इसलिए नीति तथा कार्यक्रम में स्पष्ट दृष्टिकोण सहित धारणा आनी चाहिए। प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सुदृढ़ीकरण और नागरिक मैत्री शासन को सरकार की प्राथमिकता बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक सेवा प्रवाह में सुधार और सरलीकरण तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण को सरकार की प्राथमिकता बनाने की बात कही। सांसदों ने नीति तथा कार्यक्रम में शामिल डिजिटल पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्योग के रूप में प्रवर्धन करने तथा आयोजना प्रमुखों को जिम्मेवार और उत्तरदायी बनाने जैसे विषयों को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति तथा कार्यक्रम क्षमतामूलक समाज निर्माण करते हुए समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के विकास का विषय लाने में असफल रहा है। राजनीतिक वैचारिक रूप से स्पष्ट नीति कार्यक्रम नहीं आने से बात कहते हुए सांसदों ने कहा कि सरकार को अपना राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण संविधान की परिधि के भीतर रहकर स्पष्ट करना चाहिए। इससे पहले विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को सदन में उपस्थित होकर सांसदों द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक से आकस्मिक समय में नेपाली कांग्रेस के सचेतक निश्चल राय ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा में नहीं आए तो विरोध जारी रखा जाएगा। नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक एन बहादुर मगर ने प्रश्न किया कि सरकार संविधान में व्यवस्था की गई है कि शासन प्रणाली का पालन कर रही है या किसी अन्य शासन व्यवस्था का। उन्होंने सरकार से संसद के प्रति उत्तरदायी बनने और सांसदों द्वारा उठाए गए विषयों का जवाब देने की मांग की। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की सचेतक खुशबू ओली ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री को खोजकर उनकी जवाबदेही की मांग की गई है। श्रम संस्कृति पार्टी के सांसद आरएन राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की अवहेलना की है और संसद में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों की बात प्रधानमंत्री को सुननी और जवाब देनी चाहिए। इसी तरह आज की बैठक में सभामुख डीपी अर्याल ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद गणेश पराजुली द्वारा दिए गए दो तब्यों को संसद के रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने मंत्रिपरिषद में फेरबदल और कार्य विभाजन किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति पौड़ेल ने नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सिफारिश पर वर्तमान मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया है। नए कार्य विभाजन के अनुसार प्रधानमंत्री शाह ने रक्षा, गृह तथा विज्ञान प्रविधि एवं नव प्रवर्तन मंत्रालय अपने पास रखा है। इसी प्रकार डॉ स्वर्णिम वागले, अर्थमंत्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री सुनील लम्साल, पूर्वाधार विकास मंत्री शोभिता गौतम, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सीता बादी, महिला बाल बालिका लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री प्रतिभा रावल, भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री, इसी प्रकार निशा मेहता, स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री सस्मित पोखरेल, शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री खड़गराज पौड़ेल, संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा, संचार तथा सूचना मंत्री गीता चौधरी, कृषि तथा पर्यावरण मंत्री गीता कुमारी, उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री रामजी यादव, युवा श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाए गए हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसके सभापति गगन कुमार थापा ने सरकारको संविधान, कानून और स्थापित प्रणाली के अनुसार चलाए जाने पर जोर दिया है। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति एवं प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा आज पोखरा में आयोजित प्रादेशिक स्तर की बैठक में सभापति थापा ने पार्टी की ओर से प्रदेश और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी संभाल रहे प्रत्येक सदस्य एवं पदाधिकारी से अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाने का आग्रह किया। इस वर्ष के बसंत पर्वतारोहण सत्र के लिए सगरमाथा आरोहण मार्ग खोल दिया गया है। सगरमाथा बेस कैंप से शिखर तक रस्सियां लगाए जाने के बाद आरोहण मार्ग आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है, ये जानकारी पर्यटन विभाग ने दी। विभाग ने बताया कि सगरमाथा, लोत्से और नुप्से पर्वतों के आरोहण मार्ग प्रबंधन के लिए सगरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति और नेपाल पर्वतारोहण संचालक संघ द्वारा रस्सियां लगाने का कार्य पूरा किए जाने के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा के बेस कैंप से शिखर तक का मार्ग खोल दिया गया है। युवा श्रम एवं रोजगार मंत्री रामजी यादव ने मंत्रालय के निकायों और विभागों से नागरिकों द्वारा महसूस किए जा सकने वाले परिणाममुखी सेवा प्रदान करने का आग्रह किया है। आज सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रालय स्तरीय समस्या समाधान समिति की बैठक तथा आर्थिक वर्ष 2082-83 की तीसरी त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रम में मंत्री यादव ने कहा कि विदेश रोजगार में गए नेपाली नागरिकों की सुरक्षा और उद्धार कार्य को शीघ्र और प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय की विभागीय कार्यों को अधिक सक्रिय बनाकर उनका डिजिटल रूपांतरण करना आवश्यक है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के दौरान एक ऐसा शब्द चर्चा के केंद्र में आ गया जो आमतौर पर इतिहास और रणनीतिक अध्ययन की किताबों में सुनाई देता है, वह है थ्यूडिसाइड्स ट्रैप। शी चिनफिंग ने बातचीत की शुरुआत में कहा कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन और अमेरिका थ्यूडिसाइड्स ट्रैप से ऊपर उठकर सहयोग और स्थिरता का नया मॉडल बना सकता है। उनके इस बयान को सिर्फ एक बौद्धिक टिप्पणी नहीं बल्कि अमेरिका चीन रिश्तों की दिशा पर बड़ा रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, सेमीकंडक्टर, ताइवान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर तनाव बढ़ रहा है, यह शब्द वैश्विक राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण बहसों में शामिल हो चुका है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय सभा से की गई पारित और प्रतिनिधि सभा में विचार विमर्श जारी। नए मंत्रालय लागू होने के साथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा मंत्रियों के कार्य विभाजन में फेरबदल। इस वर्ष के वसंत पर्वतारोहण सत्र के लिए सगरमाथा आरोहण मार्ग खुला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति सी चिनफिंग के बीच बीजिंग में वार्ता। बातचीत अत्यंत सकारात्मक रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।